जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यश यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारी यमुना तीर बन चारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा राधा रमन राधा राधा रमन राधा राधा रमन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे दे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
जय जय श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जयतां सूरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदांभोज राधा मदन मोहनो दिव्यद वृंदारण्य कल्प द्रुमाध श्रीमत रत्नागारं सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वट तटस्थत करशन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रयेस्तु न हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है दैनिक श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आप सभी वैष्णव उसके चरणों में अर्चना करता हूँ, आप हमें आशीर्वाद करें ताकि समल पुराण के विषय में अपनी वाणी का उपयोग कर सकूं। तो आज श्लोक संख्या 8-7-32 हरे कृष्ण कामाध्वर त्रपुर काल गराद्यनेक भूतद्रुह छपयतः स्तुतयेन तत्ते यस्त्वंत काल इद मात्मकृतं स्वनेत्र बहिनी स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद कामाध्वर त्रिपुर काल गराद्यनेक भूतद्रोह छपयत स्तुतयेन तत्ते यस्त्वंत काल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बहिनी स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद कामाध्वर त्रिपुर काल गराद्यनेक भूतद्रुह छपयतः स्तुतयेन तत्ते यस्त्वंत काल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बहिनी स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद कामाध्वर त्रिपुर काल गराद्यनेक भूतद्रोह छपयता स्तुतयेन तत्ते यस्त्वंत काल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बहुनी स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद कामाध्वर त्रिपुर काल गराद्यनेक भूतद्रोह छपयता स्तुतयेन तत्ते यस्त्वंत काल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बहुनी स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद मत काम और ध्वर इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ यथा दक्ष द्वारा संपन्न दक्ष यज्ञ त्रपुर त्रिपुरासुर कालगर कालगर आदि तथा अन्य अनेक कई भूतद्रोह जीवों को कष्ट देने वाले छपयता उनके विनाश में लगे हुए स्तुतये आपकी स्तुति न नहीं तत् वह ते आपसे बोलते हुए यतु क्योंकि अंतकाले प्रलय के समय इदम इस भौतिक जगत में आत्मकृतम अपने से किया गया स्वनेत्र आपकी आंखों से बहनी स्फुलिंग सिखाया आग की चिंगारियों से भसितम भस्मसात नवेद मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो रहा है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतः आपके द्वारा दक्ष यज्ञ त्रिपुरासुर तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने के विषय में कहना ही क्या है। ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते। चूंकि शिवजी तात्पर्य चूंकि शिवजी जो भी बड़े काम करते हैं उन्हें वे महत्वहीन समझते हैं, अतः मंथन से उत्पन्न उग्र विषय को निरर्थक करने के विषय में क्या कहा जा सकता था। इस तरह देवताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से शिवजी से प्रार्थना की कि वे उस कालकूट विष को प्रभावहीन बना दें जो सारे ब्रह्मांडों में फैलता जा रहा था। शिला प्रभुपाद की वंशी विभूषित कर पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ट पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दुर्विंद्र नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने बरह पीडम नट वर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिशम वैजयंतीं च वालम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीति कीर्तिः। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। पहले इस श्लोक का आस्वादन करते हैं, उसके बाद में इसकी भूमिका के विषय में हम चलेंगे। कामाध्वर त्रपुर काल गराद्यनेक भूत द्रोह छपे यतस्तुतयेन तत्ते यस्त्वंत काल इदमात्म कृतम स्वनेत्र वहिनी स्फुलिंग सिखया वसितम न वेद। ये जब देवता लोग समुद्र मंथन से जब कालगर हलाल विष निकला तो इस विष को लेकर के भगवान ने कहा कि आप जाओ शिव जी के पास और उनसे प्रार्थना करो कि ये विष को वो ग्रहण करें। उस समय देवता लोग आए, ब्रह्मा आदि, उन्होंने प्रार्थना की प्रजापतियों ने, और प्रजापतियों की स्तुति के बीच में ये श्लोक आ रहा है। कामाध्वर त्रिपुर काल गराध्य नेत्र इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ दक्ष द्वारा संपन्न यज्ञ, दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो, त्रिपुरासुर आदि के वध हो, या एक कालकूट विष हो, अनेक अनेक प्राणियों को कष्ट देने वाले असुरों का वध हो, छपयत स्तुते न तत्ते, इन सब कार्यों के करने के बाद में आपकी स्तुति का यह प्रयोजन नहीं है कि आपने ये कार्य किए हैं, आपकी बड़ाई में स्तुति नहीं कर रहा हूं, क्यों ये कार्य आपके सहज हैं। यस्तु अंत काल इदमात्म कृतम स्वनेत्रम, यस्तु अंत काल, इस मेटेरियल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का, पार्थिक सृष्टि का जब विनाश आता है, आत्मकृतम स्वनेत्रम, आप अपने नेत्रों को खोलते हैं, बहनी स्फुलिंग सिखया, अग्नि की चिंगारियां आपके नेत्रों से निकलती हैं और त्रिलोकी को भस्म कर देती हैं, और ऐसा करने पर भी भस्तम न भेद, आप महसूस नहीं करते कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। भौतिक सृष्टि का विनाश हो जाए उस पर भी आप ये महसूस नहीं किए करते कि कुछ हुआ है, तो यह स्तुति करना हमारी कि आप इस विष को ग्रहण कर लें आपके योग्य नहीं है, इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक तो यह छुपा हुआ है कि देवता किस हद तक स्तुति कर रहे हैं, मतलब चाटुकारिता की हद है उनकी, देवताओं की, क्यों, इसके पीछे कारण उनका जहर प्राप्त करना नहीं है बल्कि अमृत प्राप्त करना है। अब आप समझ सकते हैं कि जिससे काम बनाना हो तो उसको फिर क्या से क्या करते हैं, यह सांकेतिक अवस्था है। तो देवताओं की स्थिति यहां तक है, देवताओं की स्तुति की स्थिति तो यहां तक है, लेकिन शंकर जी के अस्तित्व के सामने यह स्तुति कोई मायना भी नहीं रखती, कोई स्तुति मायना नहीं रखती। बहुत सुंदर वर्णन इसमें आया, इसकी थोड़ी भूमिका की तरफ हम थोड़ा चलें। छठवें मनवंतर में चक्षु के पुत्र चाक्षसु बैराज और सुकृति से भगवान अजित का प्राकट्य हुआ और उन्होंने समुद्र मंथन किया। राजन, उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। आगे चलें? परीक्षित बोलते, महाराज आप आगे चलने की बात कर रहे हैं, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, देवताओं ने पिया और आप बोल रहे आगे चलें। कथा विस्तार से सुनाइए, कथा विस्तार से सुनाइए, कैसे क्या हुआ। रस लंपट कथा श्रवण की पिपासा, भक्त के जीवन का यही एक मात्र लक्ष्य और आभूषण है, कुछ नहीं करना आपको। बहुत सारी बातें आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, आत्मकल्याण के क्षेत्र में आती हैं, उच्च उच्चतर उच्चतम होती हुई एक दूसरे को पीछे छोड़ती हुई चली जाती हैं। यहां पर मोक्ष की बात कहें तो आप समझ चुके हैं बहुत ही तुक्ष बात कही जा रही है। मुक्ति की बात कहें तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां तो रस लंपट किसके हो गए हैं, पिपाशु। भगवत कथा कि पिपाशु हैं तो उनको तो भगवान की लीलाएं सुनानी थी, भगवान के ऐश्वर्य की लीलाएं भी इतनी, भगवान की लीलाएं सुनने के लिए इच्छुक हैं। और परीक्षित महाराज वहां पर बोलते हैं कि भगवान मुझे सुनाइए कैसे क्या हुआ। राजन दुर्वासा से अभिषिक्त होकर के इंद्र जब श्रीहीन हो गए, सारा वैभव एक साथ दीपक जगमगा रहा हो, दीपक बुझ जाए, प्रकाश फैल रहा हो, प्रकाश बुझ जाए, चेतना पर शरीर पर प्रसन्नता छा रही हो, वहां पर मुखारविंद शोकाकुल हो जाए, एक ही समय में दोनों भाव प्रकट होते हैं, एक ही शरीर पर प्रसन्न अवस्था में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, शोक और चिंता की अवस्था में कैसे दिखाई देते, व्यक्ति वही होता है लेकिन मुखारविंद की आभा अलग अलग हो जाती है। अहम में भरा हुए इंद्र सारी क्रियाओं में, उनकी चाल ढाल में जो ऐश्वर्य बोध था वह श्रीहीन हो गया। और श्रीहीन होने के बाद में इधर असुरों का प्रभाव और ऐश्वर्य बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद में उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिए, देवताओं को परास्त कर दिए, स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। देवता सारे चिंतित हुए, ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान अजित की स्तुतियां गाईं, भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर के बोले कि हे देवताओं, तुम्हारी समस्या और तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन इस समय काल की जो कृपा है ना वो असुरों पर हो रही है, असुर बलशाली हैं, आप इंतजार करिए जब तक आपका उत्थान अभ्युदय और उन्नति का समय आए तब तक शांति से बैठो, एक प्रयोजन अवश्य सिद्ध करो कि तुम दैत्यों से असुरों से संधि कर लो और समुद्र मंथन का उद्यम करो, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा उसका पान करो, बलशाली बनो। और देवताओं बलशाली होकर के असुरों पर आक्रमण करो, विजय प्राप्त करो। अहे मूषक वद देवा, सर्प और चूहे के न्याय से आप कार्य करो। भगवान चाहते तो यह कार्य नहीं, समुद्र मंथन के लिए प्रयोजित नहीं करते और स्वयं इस कार्य को संपन्न कर सकते थे, लेकिन भगवान बोले कि काल उस समय असुरों पर कृपा पात्र हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यह आख्यान बहुत ही सुंदर आख्यान है। इस आख्यान को समझने के लिए आपको चतुर्दिक विचार करके श्रवण करना होगा। भगवान ये कहें कि काल उन पर कृपा कर रहा है, काल का उनका पक्ष की तरफ, उनका पक्ष काल की तरफ जा रहा है और आपका समय नहीं है, तो देवता भगवान काल देवता दैत्य भगवान, बड़ा अच्छा संयोजन है। ध्यान दीजिए, प्रकृति का समय होता है, प्रकृति का उत्थान, प्रकृति की सृष्टि का या स्वर्ग का विस्तार या भगवान का लीला विलास, काल का प्रादुर्वाह कहां से होता है समझने का पूरा परिदृश्य आपकी समझ में आना चाहिए। इस भौतिक जगत में जब काल अपना कार्य करता है तो उस काल के कार्य को भगवान भी बाधित नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि काल और प्रकृति के गुण, प्रकृति भगवान की इच्छा, सबका संयुक्त समावेश है। संयुक्त समावेश है। किसके पक्ष में? पार्थिव के जगत भौतिक सृष्टि के पक्ष में। किसके पक्ष में? भौतिक सृष्टि के पक्ष में काल, प्रकृति, भगवान की इच्छा, सबका समायोजन है। यही वस्तु आध्यात्मिक जगत में कार्य नहीं करती। भगवान नारायण जब अपना एक निश्वास छोड़ते हैं, उसकी गणना आप करते रहो, और गणना आप करते भी हैं, शास्त्रों में लिखी भी है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी, ब्रह्मा जी का 12 घंटा, एक दिन सारा 30 दिन, महावर्ष आदि करने पर, और आदि करने पर ब्रह्मा जी की आयु जहां पर पहुंचती है 100 वर्ष, उससे अनंत गुना और आगे। क्यों? ब्रह्मा जी प्रकट होते गर्भोदकशायी विष्णु के क्षेत्र में। कारणोदकशायी विष्णु जब अपनी इच्छा से निश्वास निसृजित करते हैं और श्वास को खींचते हैं, अनंत काल होता है, अनंत काल। तो काल भगवान की श्वास से निसृत होते हैं, और जैसे ही काल निकलते हैं, भगवान कारणोदकशायी विष्णु कारण जल में लेटे हुए हैं, उनके पीछे ही निश्वास के साथ से ही प्रकृति प्रधाना उनका पीछा करती है। उस प्रधान प्रकृति, मूल प्रकृति पर जब काल अपना प्रभाव प्रशोधन करते हैं, क्षोभ पैदा करते हैं, भगवान की दृष्टि और इच्छा होती है, मैं तत्व प्रकट होता है। मैं तत्व आदि से सब विस्तार फिर आप जानते हैं आगे। काल की अवस्थाएं हर अवस्था में अलग अलग हैं। अकाल प्रधान है, और काल जब प्रकृति का मंथन करते हैं उसमें से गुणात्मिका प्रकृति निकलती है, त्रिगुणात्मिका माया। त्रिगुणात्मिका माया का भी अपना अपना स्थान है, तम रज सत। तम रज सत इस प्रकृति पर सापेक्ष होने के कारण भगवान भी उस कालखंड में कुछ दखल नहीं देते। आप जाओ समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन की प्रेरणा देकर के भगवान ने उनको भेजा, और जाओ मंदर पर्वत को उखाड़ो, वासुकी नाग को उसकी नेत्री बनाओ, मंथन करो, अमृत निकालो, उद्यम करो, पान करो, प्रभावशाली बनो, उन्हें हराओ। इस तरह ऐसा ही किया। जब सभी असुर और देवता मिलकर के, पहले तो देवता आए और आकर के दैत्यों के पास गए, और दैत्यों के पास जैसे ही गए तो सारे दैत्य विचार करने लगे, इंद्रादि देवता आ रहे हैं, कोई न कोई षड्यंत्र है। वो सीधे के सीधे तैयार हो गए, बहुत बढ़िया है, हथियार तो कुछ नहीं ला रहे, कोई हथियार इनके पास नहीं, मार दो सबको, सभी को नष्ट कर दो, मौका बहुत बढ़िया मिल गया। निशस्त्र सामने दुश्मन खड़ा हुआ हो उसका वध कर देना चाहिए। ऐसा विचार करने पर जैसे प्रेरित हुए, बलि महाराज ने उनको रोक दिया। जब सामने शत्रु निशस्त्र होकर के आ रहा है तो बात सुननी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं। आने के बाद में संदिग्ध अवस्था, कोई व्यक्ति जब आता है जिसको आप शत्रु मानते हैं, उसके आने पर, उसकी एक एक क्रिया पर, उसके एक एक शब्द पर बहुत ही गहराई से अन्वेषण करते हैं, कैसे आ रहा है, क्या मुद्रा है, क्या बोला, क्या बोलना चाहता है, कोई अंदर षड्यंत्र छुपा हुआ है, वो हमसे मीठी बात कहकर के अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता, पूरा का पूरा फोकस होता है।
आने के बाद में उन्होंने कहा, बलि जी एक विचार करो, इस समय आप शक्तिशाली हैं, हमारे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हमें तो आपने दलित कर ही दिया है, एक विचार कर लेते हैं, आखिर कुछ भी हो आप स्वर्ग पर आधिपत्य शासन करो या मैंने कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भाई ने नहीं किया तो दूसरे भाई ने कर लिया, हम दोनों हैं तो मौसी मौसी के ही, तो क्या फर्क पड़ता है, इस मौसी का नहीं तो उसका, कोई बात नहीं है, इन सारी बातों को भूल जाओ आप, भूल जाओ। तो फिर क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ना कि हम दोनों ही समृद्ध होकर के शांति से रहें, आनंद से रहें, काहे के लिए हम परेशान हो, हम अपनी सारी शक्ति को दुश्मन को नष्ट करने में ही लगा दें, हम आपको शत्रु माने, आप हमको शत्रु माने, आप अपनी ऊर्जा हम पर लगा दें, हमें नष्ट करने पर हम अपनी ऊर्जा को संग्रहित करें और आपको नष्ट करने पर लगा दें, अन्य सारे विचारों को छोड़ करके हम दोनों शांति से ना रहें, गद्दी पर तुम बैठ जाओ क्या फर्क पड़ता है, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के पास सामर्थ्य और बल है, हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, हम दोनों पिएंगे और पीने के बाद में बड़े शक्तिशाली होकर के आराम से रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, साम्राज्य आप संभालो, स्वर्ग आप संभालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भय का वातावरण तो दूर होगा, शक्ति आएगी, सब कुछ बढ़िया होगा, हम दोनों रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, हाँ अमृत, अमृत तो एक साथ प्राप्त होगा, हाँ। तो ये बात दैत्यों को असुरों को भा गई, बात तो सही कह रहे हैं, ये भी बात सही कह रहे हैं, इनका भी पक्ष है और इनका भी पक्ष है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं ना तो दोनों व्यक्ति के मिलने के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों ही सहमत हो जाते हैं, उस सहमति पर एक विचार रखना कि दोनों अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई किसी संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, इस विचार को गहराई के साथ में आप समझने की कोशिश करेंगे तो जहां बहुत प्रेम बहुत प्रेम बहुत प्यार ये सारी बातें चलती हैं ना, दरकिनार कर दो, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं और ये स्वार्थ इतना ब्लाइंड इतना अंधा हो जाता है कि अंधा होकर के माया के वातावरण में आकर के अज्ञान अंधकार की स्थिति आकर के वह आंखों के सामने पट्टी डाल देता है और प्राणी कह उठते हैं वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसको प्यार करती हूं, कोई किसी को प्यार नहीं करता, तुम उसको प्यार क्यों करते हो? अरे साहब देखने में बहुत सुंदर है, बोलती बहुत सुंदर है, अरे हमारे घर में आ जाएगी दीपक सा जल जाएगा, अरे वो क्या बढ़िया उसकी स्टाइल है, बहुत बढ़िया कमाता है, देखने में सुंदर लगता है, बोले तो ऐसे लगता है जैसे फूल खिल रहे हो, तो बोले तो ऐसे जैसे फूल खिल रहे हो, ऐसी सुंदरता है, ऐसा कमाता है, ऐसी है वैसी है वैसी है, तुमने अपने स्वार्थ निश्चित कर लिए हैं इसलिए तुम उससे प्यार करने के चक्कर में हो, अन्यथा आत्मा और प्रकृति दोनों में तो कोई भेद ही नहीं है, आत्मा अपने स्थान पर है, प्रकृति अपने स्थान पर है, न उसमें कोई दोष है न उसमें कोई दोष है, दोष तो तब आता है जब दोनों मिलकर के जब यहां पर माया का आवरण चढ़ता है, तो इस प्रकार संसार में प्यार करते हैं प्रेम करते हैं, इसी तरह से देवासुर दोनों मिल गए और दोनों ने कहा कि ठीक कहा आपने हमें यही कार्य करना चाहिए, समुद्र मंथन की तैयारी हुई, मंदरांचल पर्वत को उखाड़ने का प्रयत्न किया, उखाड़ भी लिया लेकिन उखाड़ करके समुद्र तक लाने में वो समर्थवान नहीं हुए, अब दोनों खड़े हुए क्या करें, सारे बाहुबल लगा दिया, सारी शक्ति लगा दिया, उखाड़ तो दिया, अब लेकर के कैसे जाएं, और एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अरे हम में ताकत नहीं है तो तुम ही उठा लो, तुम में नहीं है तो तुम ही उठा लो, दोनों ही अवाक खड़े रह गए, भगवान उसी समय प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के बोलते क्या हुआ, भगवान ये उठ करके जा नहीं रहा, अरे ये नहीं जा रहा क्या फर्क पड़ता है, गरुड़ पर भगवान आए और आकर के हाथ से मंदरांचल पर्वत को उठाया और उठाने के बाद में गरुड़ को रखा, बोला तुम पीछे आओ, आ गए और भगवान ने उसका स्थापन क्षीर सागर में कर दिया, क्षीर सागर में स्थान करने के बाद में वासुकी से बोले कि हम जो समुद्र मंथन करने के लिए जा रहे हैं उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत आपको भी प्रदान किया जाएगा, वासुकी भी तैयार, चलते हैं, मंदर पर्वत के साथ में लपेट दिया गया और लपेटने के बाद में प्रयत्न चालू हो गया, मंथन चालू, चालू होने के बाद में जैसी चालू करने की प्रक्रिया चालू की, अब जो पर्वत था ना वो नीचे की तरफ जाने लगा। भगवान ने कश्यप स्वरूप धारण करके नीचे पहुंचे, लेकर के कौन आया पर्वत को? भगवान। नीचे कश्यप के रूप में पहुंचे, ऊपर उछलने लगा, एक साथ बैलेंस नहीं बनता है ना, तो भगवान ऊपर से हाथ लगा करके अपना दबाव देते हैं, चालू हो गया। भाई किसी चीज का मंथन करने के लिए तो आपको एक स्थिति लानी पड़ेगी, उसको नीचे भी जाने से मंथन नहीं होगा, ऊपर आने से भी मंथन नहीं होगा। ग्रामीण जीवन इसीलिए बहुत बढ़िया कहा जाता है कि जिसका जीवन ग्रामीण जीवन जिसने जिया है, जो गांव में जिया है, अब तो नहीं कहा जा सकता, परिवर्तन बहुत हो चुका है। जिन्होंने गांव में रहे हैं, जो गांव में जिन्होंने जन्म हुए हैं, जिन्होंने गाय पशु बैल पाले हैं और जिनकी माताओं ने मंथन किया है, शायद दुर्लभ हो गया। जिस बात को जो सुलभ थी वो दुर्लभ बात हो गई है ना। एक गाड़ करके स्तंभ लकड़ी का और उसमें रस्सी डाल करके और उसको घर्षण करने के लिए क्या बोलोगे? शुद्ध नाम तो उसका रई है। क्या नाम है? रई। रस्सी जिसको लपेटी जाती है उसको नेती, नेती नोती मंथन मथानी, नेती लपेटती लपेटने वाली वस्तु, जिस पर लपेटी गई नोती, और जिससे मंथन किया गया उसको मंथान भी बोला गया, और जिसके अंदर पात्र है वो समुद्र है ना, मंथानी, मंथनी मंथानी, मंथनी जिससे मथेंगे, मंथानी जिसमें मथेंगे। अब मंथानी ही मधानी कहने लगी, और इस प्रकार जाकर के जब मंथन हुआ तो क्या निकला? उसमें से हलाल विष निकला। हलाल विष निकलने के बाद में विचार किया कि इस विष को अब क्या करें, अब क्या करें। ध्यान दीजिए, भगवान, भगवान का भक्त काल, भगवान ने याद किया अपने भक्त को। भक्त को याद करने के बाद में शंकर जी को याद किया गया, ये जाकर के शंकर जी को प्रदान करो। लेकर के जाकर के गए शंकर जी के पास में, और शंकर जी के पास में जाकर के प्रार्थना करते हैं, त्रैलोकी दहनात विषाद, हे शंकर जी त्रैलोकी दहन हो रही है इस विष के कारण, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। और उसी के बीच में प्रार्थना करते हुए सुंदर सुंदर बातों का यहां उल्लेख हुआ, बहुत सुंदर स्तुति हुई है, और शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी का नाम क्या है? आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न हो जाने, शंकर जी जैसी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी देव कोई न हुआ न होगा। आशुतोष जो याद करे उसी को प्रसन्न करते हैं, भूत प्रेतगण आदि हो उनकी छत्र छाया में आ जाओ प्रसन्न है। असुर आदि भी आते हैं वो उनको भी वरदान देते हैं, देवता आते हैं उनको भी वरदान देते हैं, सबको प्रसन्न करने के बाद में फिर भी वो अपनी स्थिति में रहते हैं। अपनी स्थिति में रहना, मूल रूप में रहना, और उनका मूल रूप है क्या? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, भगवान की नित्य सेवा में ही संलग्न रहते हैं वो। शंकर जी भगवान से एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं, अलग नहीं हो सकते, स्मृति में नहीं हटा ही नहीं सकते। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये सारा जगत स्वप्न है, ये कह कौन रहा है? शंकर जी। और उन शंकर जी को यहां पर बोला गया है आत्मकृत इदम आत्मकृत स्वनेत्र, अपनी सृष्टि को ही स्वयं जला रहे हैं नेत्रों के साथ में, और पता नहीं चलता है। शंकर जी का नाम है भव, उनकी पत्नी का नाम भवानी, भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, और दुर्गा विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं, नव दुर्गा, और नव दुर्गा के रूप में आप जैसी याचना करना चाहते हो, खप्पर वाली खून वाली तो चल एक साइड में तू भी आ जा, और नहीं साहब सरस्वती वंदना करना चाहते हो तो भागवत में भी देवीम सरस्वतीम व्यासम लक्ष्मी की तो नवरूप दुर्गा के रूप में है, इसीलिए तो कहा जाता है कि अरे आपके यहां कौन सी दुर्गा पूजी जाती है, हमारे यहां तो नौमी, हमारे यहां सप्तमी, हमारे यहां अष्टमी, हमारे यहां तो प्रथम, हमारे यहां द्वितीय, हमारे यहां अलग अलग क्यों हो गई? अलग अलग इसलिए हो गई कि प्रकृति के अंतर्गत तुम्हारी चेतनाएं भी तो अलग अलग हैं। सरस्वती की आराधना करने वाले हे मां, आप कृपा करके ये आपका ने तंबूरा दिया है, ये यंत्र दिया है, ये मस्तिष्क दिया है, ये बुद्धि है, आप कृपा करके हमारे कृष्ण के चरणों में हमारी बुद्धि लगे। इस प्रार्थना से आपने बहुत बड़ी प्रार्थना कर ली। बुद्धि बुद्धि, आप बुद्धि को कई बार कहो और सोचो बुद्धि का अर्थ क्या होता है। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति का अंश है बुद्धि। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम यति यम वे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मनोबुद्धि बुद्धि, और बुद्धि जहां तक अन्वेषण करेगी वो पदार्थ का ही करेगी। पदार्थ के विषय में मन जो चाहता है यह तुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस निर्णय को देने वाली कौन है? बुद्धि। मन क्या चाहता है? मैं तो यह भी चाहता हूं, यह भी चाहता हूं, जहां सुख मिलेगा वो चाहता है। मन तो चाहता है संकल्प विकल्प, बुद्धि देती है निर्णय, मैंने ऐसा किया है, यह अहंकार। जब बुद्धि शुद्ध होती है, जब बुद्धि शुद्ध होती है तब उस स्थिति का नाम क्या है? वहां बुद्धि नहीं रह जाती, उसका नाम है धी। क्या है? धीमान। भागवत में धीमान, धीम ही धी यो न प्रचोदयात। मेरी बुद्धि को आप मेरी धी को लगाएं, बुद्धि मत बोलो, आ मेरी धी को लगाओ। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त को, भगवान के भक्त को बुद्धिमान नहीं बोला जाता, धीमान। और ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है, आप अगर समझ पाओ तो भगवत गीता में, भगवत गीता एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ में, एक भी श्लोक मत बोलो, पूरी भगवत गीता याद करा दूं, एक भी श्लोक की जरूरत नहीं है, पूरी भगवत गीता याद। अरे यह कैसे कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता? संभव। थोड़ा सा बानगी लीजिए, अर्जुन संसारी व्यक्ति बना हुआ है, विषाद में डूबा हुआ है, पहले अध्याय में ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, हमारे गुरुजी, हमारे ये, हमारे चाचा, हमारे ताऊ सारे, अब मैं क्या करूं? इनके मरने पर मैं जीवित भी तो नहीं रहना चाहता, मेरे शोक को दूर करने के लिए स्वर्ग का पूरा साम्राज्य मुझे प्रदान कर दिया जाए तब भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, फिर मैं इसके लिए भूमि के लिए क्यों लड़ूं? मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं उत्से गोविंद उक्ता तुष्णिम बबो महाम, नहीं उत्से मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय भगवान जब बोलते हैं, भगवान विषाद को हटाते हैं, और विषाद को हटाने के बाद में सबसे पहले बोलते हैं, अर्जुन ये तूने जो कीचड़ इकट्ठा कर रखा है ना, मोह आसक्ति का, संसार में अज्ञान अंधकार का, तू इसको हटा दे। असोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावान अच्छवास से गतासून गतासून्य नान सोचित पंडिता। अगर तू विद्वान होता तो कौन मर गया, कौन पैदा हुआ, तुझे क्या लेना देना था? कौन मर गया, कौन पैदा हुआ, क्या मतलब? तू पैदा हो गया ना, किसके लिए पैदा हुआ है? तेरा कुछ बैलेंस है इसलिए तू पैदा हुआ, तू अपने और बैलेंस को आगे बढ़ा दे, फिर आकर के पैदा हो जा। अगर चाहता है कुछ था उसको पूरा कर, आगे नहीं हमने इस बैंक में बैलेंस डालना है ताकि फिर हमारे द्वारा आकर के हमारा पीछा करे। प्रारब्ध संचित क्रियमाण बीज आग लगा दो इसमें, असंगता पैदा कर दी, कीचड़ को हटा दिया, और हटाने के बाद में भगवान बोलते आत्मा, मल को हटाओ, मोह को हटाओ, छह श्लोकों में हटा दिया, आत्मा। आत्मा इस संसार की वस्तु नहीं है, पैदा नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, कुछ नहीं किया जा सकता, जलाई नहीं जा सकती, ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, और इसके बगैर संसार में कुछ होता नहीं है। अभिकारी है लेकिन इसकी अनुपस्थिति में संसार की कोई उपस्थिति नहीं है, इसलिए आत्मा आत्मा के साथ में जो प्रकृति का आवरण चढ़ गया है, स्वधर्मम अपचावेक्ष न विकंपित मरहसि धर्म्यात युद्धा शिरो अन्य क्षत्रिय सन विद्यते यद्रक्षयाचोपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखना क्षत्रिया पार्थ लवंते युद्ध मीदृशम। अगर तू इसी परंपरा में रहना चाहता है, प्रकृति के बंधन में रहना चाहता है, स्वधर्म में रहना चाहता है, तो तू क्षत्रिय है। फिर कैसे बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? भगवान ने मोह को हटाया, आत्मा को दिखाया, स्वधर्म की बात कराई और बात को हटा करके एकदम भगवान बोलते हैं, सांख्य बुद्ध योगा त्वयाम सुनो, मैंने जो तुझसे बात कही है सांख्य की बात करी है, अब तू बुद्ध योग की बात कर। बुद्ध या युग तो या पार्थ कर्म बंधन प्रयाससी, जो व्यक्ति बुद्धि के योग को प्राप्त करता है कर्म के बंधनों को तुरंत नष्ट करता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, अवश्य तुम्हें भोगने पड़ेंगे जो तुमने कर्म किए हैं, चाहे वो तो कर्म शुभ हो या अशुभ हो, कर्म कांड इस रेंज को पार नहीं कर सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम, यहां तो तुरंत ही बोल दिया कर्म बंध प्रयाससी, कर्म के बंधनों को तुरंत तोड़ दिया भगवान ने, तो बोल दिया यथाई धान से समृद्ध और अग्नि भस्मसात कुरते जना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करते था। जिस प्रकार ईंधन में अग्नि लगा दो तो ईंधन भस्म हो जाता है, उसी प्रकार कर्मों के बहुत बड़े संस्कार प्रारब्ध संचित क्रियमाण बीज सब में आग लगा दो, कैसे लगेगी आग? ज्ञान से। और ध्यान दीजिए, जब यही बुद्धि यही मन यही अहंकार जब आत्मा के संपर्क में आता है, आत्मा का अवलोकन करता है, ऊपर नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं परमात्मा की बात और भगवान की बात अभी नहीं कह रहा हूं, आत्मदर्शन करता है, आत्मदर्शन की लाइट आने के बाद आत्मा इतनी प्रभावशाली इतनी दैदीप्तमान है कि उसकी तरफ मुड़ते ही एकदम शांति और आनंद और एक साथ बादल छट जाते हैं। छटने के बाद में और इसी अध्याय दो में ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोयति स्थित्व श्याम अंत काली भी ब्रह्म निर्माण रक्षति, ब्रह्म निर्माण तक पहुंचा दिया गया है, सुंदर वर्णन हुआ है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, देवासुर संग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। देवासुर संग्राम हमारा बाहर, आप जो देवासुर संग्राम देख रहे हो देवासुर संग्राम को अंदर देखो, भगवान है, भक्त है, प्रकट करो, प्रकृति है समझो उसको, काल है समझो उसको, और काल का बहुत बड़ा सम्मान करो। काल भगवान की आज्ञा है, उस काल को भगवान के नाम से जोड़ दो। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जिन खोय, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। सब कुछ आपको, कुछ नहीं आपको पता है, परीक्षित महाराज को पता है। और इसी बात को सुखदेव जी कहते, राजन चिंता करने की बात क्या है, अरे किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन से मिनट में तुम्हारी सांस निकल जाए, लेकिन तुम्हारा निश्चित हो चुका है कि तुम 7 दिवस तक नहीं मरोगे। इसीलिए क्या करना है, वही दर्शन दिया और एक साथ ही थोड़े ही समय में मंगलाचरण करने से पहले पहले उस भय को दूर कर दिया कि मैं मरूंगा। अंत में पूछ लिया, राजन तुमने जो पूछा मैंने उत्तर दिया, अब क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं भगवान आपके प्रश्न का और मैं उत्तर देने के में समर्थ हो सकता हूं? नहीं, आपने मैंने आपने प्रश्न किए मैंने उत्तर दिए है ना, तो तुमने श्रवण किया है ना। राजन तुम मरोगे? भगवान मैं मरने की वस्तु ही नहीं हूं, मरूंगा क्यों? मैं मरने की वस्तु ही नहीं तो मरूंगा क्यों? राजन तुम निकल गए। इसीलिए संसार में जो भय है, सबसे बड़े भय का नाम बताओ, उस भय का नाम है मृत्यु। क्या नाम है? मृत्यु। और सच्ची वाली बात है, अगर भगवान का भक्त है तो मृत्यु भय की वस्तु नहीं है, मृत्यु तो आनंद की वस्तु है। शरीर छोड़ना तो आनंद की वस्तु है, किसी की वस्तु आपने ली है जिस तरह से संकोच के भाव से ली, आप लेते समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, देते समय आप बेईमान हो रहे हो। होना तो यह चाहिए कि जब लेने जाओ ना तब संकोच होना चाहिए, और देते समय तो हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए कि मैंने जिसकी वस्तु ली है मैं सहर दे रहा हूं। इसीलिए तैयार रहना चाहिए, हे मेरे प्यारे प्रभु आपकी वस्तु से मैंने अपना काम कर लिया है, अब मुझे क्या है? आप जो ले लो, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते आप भगवान की दी हुई वस्तु को। नष्ट करने का अधिकार नहीं है। नारद जी ने इस बात को बहुत बढ़िया तरीके के साथ दिखाया, एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन न सत्यामलात्मना काल प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। काला आ गया जब ये शरीर छूटना था और उसी समय जैसे बिजली चमकती है वैसे शरीर छूट गया। ये काल कंडीशनल है आपके पास में, शरीर आपका कैसा है कंडीशनल है, इसकी कंडीशन में इसको जाने दो। हमने अपनी कंडीशन खत्म कर दी है और हमने राधा श्याम सुंदर के चरण अरविंदों में समर्पण कर दिया है, किसी बात की चिंता नहीं। इसीलिए भगवान शंकर हमेशा विराजमान रहते हैं श्याम सुंदर के पास में। गोपेश्वर, चकलेश्वर, भूतेश्वर और साथ में आती है भवानी, खड़ी हो जाओ छठीकरा रोड के पास में, जो कोई अनधिकृत व्यक्ति आता है वहीं पर रोको उसको। बोला नहीं लक्ष्मी आप इधर आ जाओ, जमुना के उस साइड में कोई लक्ष्मी के पास आता जाने दो उसका, लेकिन शंकर जी कहते हैं कि मेरे प्यारे के पास में तो मेरा ही प्यारा आएगा, अगर मुझसे प्रेम किया होगा तो मेरे प्रभु की तरफ बढ़ेगा। इसलिए हम पूर्ण रूप से शंकर भगवान के महत्व को समझें और जानें, हमारे गुरुदेव हैं, गुरुतुल्य हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम वैष्णव शंभु हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो यह सारा जगत स्वप्न है, था नहीं है नहीं रहेगा। तो मित्रों पूरी शक्ति के साथ में, पूरी बौद्धिक शक्ति के साथ में, पूरी धी शक्ति के साथ में और पूरे अपने ताकत के साथ में भगवान की शरणागति को ग्रहण करो। उद्यम करना है तो भगवान को प्रसन्न करने का उद्यम करो, सारे उद्यम फेल होंगे और आपको अंततो गत्वा प्राश्चित्य और पराजय की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।